ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। रुद्राश्रमद्भागवतम् संगति अध्याय 5 श्लोक संख्या 30 और 31। 30 को मैं पढ़ता हूँ फिर 31 का उच्चारण करेंगे। अहम तत्वादि कुर्वाना मनोवैकारिक अद्भुता वैकारिका शे देवा अर्थभिव्यञ्जनम् यतः। अनुवाद, मिथ्या अहंकार सतगुण से अंत क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंत क्रिया के परिणाम है। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंत क्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। श्लोक संख्या 31। तैजसानिन्द्रियान्नेव ज्ञानकर्ममयानि च तैजसानिन्द्रियान्नेव ज्ञानकर्ममयानि च तैजसानिन्द्रियान्नेव ज्ञानकर्ममयानि च। शब्दार्थ, तेजसानी रजोगुण, इंद्रियानी इंद्रियां, एवं निश्चय ही ज्ञान ज्ञान दार्शनिक चिंतन, कर्म सकाम कर्म, मयानी प्रधान रूप से भी। अनुवाद और तात्पर्य, हिज डिवाइन ब्लेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार से है, इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो वो मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकर होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश है। जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है, मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है पर ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से ये जान लेना चाहिए कि पर ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। पर ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए ये दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तैजसानेन्द्रियान्येव ज्ञानकर्ममयानि च इंद्रियानि च हि मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन पर अज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। तो श्रीमद् भागवतम कई जो अध्याय है, जहां विदुर और मैत्रेय के बीच में एक विशेष संवाद की संवाद शुरू हुआ है, तो विदुर जो मैत्रेय मुनि से मिले थे, तो उन्होंने बहुत ही बड़ी अभिलाषा या अपनी जो इच्छा है वह मैत्रेय मुनि के पास व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, हरे कथा में व कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य एवार्त बंधु शिवाय न कीर्तये तीर्थ कीर्ते। तो वो कहते हैं कि हरे कथा में वो कथा सुसारम। मैत्रेय मुनि से उन्होंने कहा कि हे मैत्रेय मुनि, मैं श्री हरि कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहता हूं, और मुझे क्या सुनाइए? कथा सुसारम। सार जो है उसको आप मुझे प्रदान कीजिए। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम सारी कथाओं का क्या है? सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव संमितम। तो ये शुकदेव गोस्वामी के मुखामृत से मुख से ये अमृत निकल रहा है। और वास्तव में व्यासदेव ने अपने भगवत भक्ति की परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम का संकलन किया था, और सारे वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि पुराणों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में कथा, सारी कथाओं का सार है। और मैत्रेय मुनि को कहते कि आप ऐसे करो जिस प्रकार से मधुमक्खियां करती हैं। मधुमक्खियां अलग अलग पुष्पों पर जाती हैं, शहद को इकट्ठा करती हैं एक प्रकार से, तो उसी भांति आप भी मुझे भगवान की नाना प्रकार की कथाएं हैं, दिव्यता है, चर्चाएं हैं, लेकिन उनका सार मुझे आप प्रकट कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे बढ़कर इस संसार के लिए मंगलदायी कोई और चीज नहीं है कृष्ण कथा के अलावा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र का आलिंगन करते हैं। हाँ, इसलिए आलिंगन करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा तव कथामृतम तप्त जीवन। ये जो कृष्ण के संबंधित चर्चाएं हैं ये कोई सर्वसाधारण चर्चा नहीं है, ये वास्तव में सर्वोत्कृष्ट महान यज्ञ है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता होगा जिसमें नाना प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा होगा, हजारों लोग आ रहे होंगे, हाँ तो वो केवल अवडंबर है। ऐसे अवडंबर से भी लाखों करोड़ों गुना कृष्ण कथा, हाँ चाहे थोड़े लोग मिलकर करते हैं कृष्ण का गुणगान, वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसका लाभ पूरे संसार को प्राप्त होता है। इसलिए वो कहते हैं शिवाय न कीर्तये, शिवाय मीन्स मंगल, इससे बढ़कर मंगलदायक वस्तु कोई और नहीं है। और यदि हम भी अपने जीवन में अपना मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो हमें भी भगवान की ये जो कृष्ण कथा है उसमें निमग्न हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक रूप से जानना का प्रयास करना चाहिए और भक्तों के बीच में आकर कृष्ण कथा को सुनते रहना चाहिए। सुनिते सुनिते से कृष्णदास कविराज कहते हैं आपको भगवान से प्रेम हो या ना हो, आपका हृदय भौतिक कामनाओं से भरा हो या शुद्ध हो, कोई चिंता मत करो। आप चाहे कितने शुद्र पापी तापी नगण्य क्यों ना हो, लेकिन केवल आप बैठते हो और बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण कथा को निरंतर सुनते हो, तो ये कृष्ण कथा इतनी सामर्थ्यवान है कि आपका जीवन मंगलमय और शुद्ध किए बिना आपको छोड़ती नहीं है। तो ये भागवतम वास्तव में भक्तों के लिए है, इसलिए भागवतम का दूसरा नाम है सात्वत संहिता। सात्वत मीन्स डिवोटीज, भक्त। तो बाकी ग्रंथ अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान से सर्वाधिक प्रीति रखते हैं, उनके लिए ये भागवतम है। या जो भगवान से सर्वाधिक प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम है। इसी कारण से शुकदेव गोस्वामी ने किसी और चीज को श्रवणीय, श्रेष्ठ श्रवणीय नहीं कहा। परीक्षित महाराज को 7 दिनों में कुछ सुनाना था तो उन्होंने सारे चीजों का निचोड़ या सार प्रदान किया और वो श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे विदुर जब ये अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे क्या सुनाओ आप, सब विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रग्रहित शक्ति चकार कर्मान्यति पुरुषानि यानीश्वरा कीर्तयतानि मह्यम। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भगवान कृष्ण के विश्व जन्म स्थिति संयम, भगवान किस प्रकार से इस संसार को परम नियंता है और उनके कार्यकलाप अति मानवीय है, तो ऐसे दिव्य कार्यों का आप कीर्तन करो, सुनाओ और बताओ कि उन्होंने इस संसार जो इतना विराट है उसका सृजन कैसे किया, उसका पालन कैसे करते हैं और अपने सारे शक्तियों के साथ भगवान इस संसार में किस प्रकार से अवतरित होते हैं। तो ये सब चीजें जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के सामने रखी तो मैत्रेय मुनि बहुत आनंदित हुए। मैत्रेय मुनि ने कहा साधु पृष्ठम, सबसे पहला ये शब्द उन्होंने वर्णित किया। उन्होंने कहा कि आप वास्तव में सारे संसार में श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है और जो वस्तु सुनने की कामना की है वो इतनी सामर्थ्यवान और शक्ति संपन्न है कि इसको सुनने से या इसका उच्चारण करने मात्र से मेरा ही नहीं बल्कि सारे जगत का हित और शुद्धि हो सकती है। इसलिए उन्होंने विदुर का गुणगान किया मैत्रेय मुनि ने। यह नहीं सोचा कि अरे विदुर प्रश्न पूछ रहा है तो ये गिरा हुआ है, मुझसे अधिक क्या है, मैं उनसे अधिक सर्वश्रेष्ठ हूं। जब विदुर ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि वास्तव में आप अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, बल्कि सांसारिक जगत में जो बंधे हुए जीव हैं, उनकी शुद्धि के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हो। आप तो कैसे हो, आप कृष्ण के अनन्य भक्त हो, क्योंकि आप साक्षात व्यास देव के द्वारा प्रकट किए गए हो। व्यास देव के ही पुत्र हैं विदुर, और उन्होंने कहा मांडव्य मुनि के शाप के कारण आप तो यमराज थे, लेकिन एक विदुर के रूप में आपको जन्म ग्रहण करना पड़ा, इसलिए हे विदुर आप कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय हो। भगवान जब इस संसार को छोड़ने वाले थे तो उन्होंने आपका स्मरण किया और आपके लिए उपदेश छोड़कर गए हैं जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो भगवान उनका स्मरण कर रहे थे जाने से पूर्व। तो इस प्रकार से जब मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने फिर इस कुछ श्लोकों में किस प्रकार से अलग अलग चीजों की सृष्टि होती है उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये जो इंद्रिया है ये वास्तव में रजोगुण की उपज है। रजोगुण के द्वारा जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित है उसके द्वारा इन इंद्रियों की सृष्टि होती है। तो इसका मतलब ये जो इंद्रिया है उनमें स्वभावता क्या है, रजोगुण है। और ये रजोगुण वास्तव में हमारे अंदर भोग करने की जो प्रबल प्रवृत्ति है उसको प्रदर्शित करता है। और रजोगुण के कारण हम पागल हो उठते हैं इस संसार का भोग करने के लिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहि नमपेयम्। तो वो कहते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, इस संसार में जो तीनों गुण है ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को बांधते हैं। त्रिभिर गुणमयीर भावे, ये जो प्रकृति है ये तीन गुणों से बनी हुई है जिनके कारण हर एक व्यक्ति इस प्रकृति में बंधा हुआ है। तो इसके द्वारा यहां इस श्लोक में वो कहते हैं कि इस रजोगुण के कारण ही क्या है कि व्यक्ति सकाम कर्म करने के लिए सदैव प्रवृत्त रहता है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये रजोगुण का प्राकट्य कैसे है, तो गीता में कृष्ण कहते हैं रजो रागात्मक विद्धि तृष्ण संग समुद्भवम् तन्नी बदनांति कौते यह कर्म संगेन देहिना। तो ये रजोगुण की जो प्राकट्य है हमारे जीवन में, रजो रागात्मकम विद्धि, रागात्मकम मतलब है कि असीमित आकांक्षाएं। तो एक जीव के अंदर असीमित आकांक्षाएं प्रकट हो जाती है, काम उत्पन्न हो जाता है और तृष्णा आदि बढ़ती है, जिसके द्वारा तन्नी बदनांति कौते यह हे कौते है, वो व्यक्ति इस संसार में अधिक से अधिक बनने लगता है और कर्म संगेन देहिना। और वास्तव में फिर सकाम कर्म के द्वारा जो रजोगुण से उत्पन्न है व्यक्ति इस संसार में बनता है और उसकी पूर्ति के लिए पागल होकर सकाम कर्म करने लगता है। तो सारे जो सकाम कर्म है जो रजोगुण से प्रेरित है और उनका परम उद्देश्य क्या है, सुखोपभोग, सुख प्राप्ति की अभिलाषा। और सुख प्राप्ति की अभिलाषा में जो जीव है इंद्रिय तृप्ति के कार्य में रत होने लगता है, निरंतर मग्न होता है और इवन वो धन भी प्राप्त करता है तो उसको सकाम कर्म में लगाता है। उसके द्वारा चाहे हॉस्पिटल्स बनाएगा या फिर स्कूल्स खोलेगा, कुछ जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं उनको दान देगा, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना क्या है, अत्यधिक सुखों को भोग इंद्रिय भोग उसे प्राप्त हो इस जीवन में और आने वाले अगले जीवन में भी। तो इस प्रकार से कामना से युक्त वो कर्म करने लगता है और ये जो रजोगुण है जब बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर एक चीज सर्वाधिक अत्यधिक उत्पन्न होने लगती है और वो है अत्यधिक आसक्ति। अत्यधिक आसक्ति ये रजोगुण का एक विशेष लक्षण है। भगवान कहते भगवद गीता में लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणामशम स्पृहा रजश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ अर्जुन जब ये रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर इस संसारिक वस्तुओं के प्रति संसारिक जो भोग की जो चीजें हैं उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति उदित उसके हृदय में होती है और दूसरा वो उस भोग प्राप्ति करने के लिए अत्यधिक उद्यम करता रहता है बहुत मेहनत करता है बहुत कष्ट करता है और इतना ही नहीं ऐसा करते करते उसके अंदर और अधिक अनियंत्रित जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगती है और भोग करने की लालसा उसके अंदर तीव्र होती है। इसी कारण से भगवान और भी भगवद गीता में कहते हैं रजसो लोभ एवच। केवल 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 इंद्रिय भोग करने के लिए उसके हृदय में लोभ की वृद्धि होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषय विषा चले दीवाने से हिया चले जुड़ाए ते ना कहनु उपाय। तो वो कहते हैं जो विषय है क्योंकि इंद्रियों को इंद्रिय है तो हम उसके अर्थों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। इंद्रिय अर्थ्यभ्यः गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का जो अर्थ है क्या इंद्रियों का अर्थ जो उनके विषय है। एक व्यक्ति हमेशा इन इंद्रियों के जो विषय है उनके बारे में हमेशा चिंतन करते रहता है। क्यों चिंतन करता है क्योंकि उस विषयों के जो अर्थ है विषय है इंद्रियों के विषय उनके उपभोग के द्वारा वो सर्वाधिक आनंद की अनुभूति करता है। इसी कारण से नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि कैसा मेरा जीवन है। वो कहते हैं विषय विषम विष सतत खाइनो गौर कीर्तने रसे मगन नहिनो। मेरा मन क्यों नहीं लगता गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में क्यों भगवत कथा श्रवण में नहीं लगता क्यों सेवा के कार्य में नहीं लगता क्यों क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं इस इंद्रियों के जो विषय है उसको उन्होंने विष की तुलना की है उसको सतत खा रहा हूं। इंद्रिय तृप्ति के कार्य में मग्न हो जिसके कारण मेरा मन गौरांग महाप्रभु के इस कीर्तन में कदापि लगता नहीं है ना रुचि रखता है। तो ये जो इंद्रिय विषय है ये वास्तव में विष से भी अधिक भयावह है। हम संसारिक विष खाएंगे तो इस शरीर को त्याग सकते हैं लेकिन इंद्रियों का जो विषय है विषय रूपी विष को हम यदि खाते हैं निरंतर उसका उपभोग करते हैं तो हमें क्या करना होगा अनेक शरीर अनेक योनियों में भ्रमण करना होगा। इसी कारण से शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इंद्रिय विषयों को भोगने में जब व्यक्ति पागल हो उठता है तो वो व्यक्ति अभद्र योनियों में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है नाना योनियों में भ्रमण करता है और विष को पान करने लगता है उसका जो दुख है वो अधिक बढ़ने लगता है। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि जो अलग अलग पशु हैं उनका एक इंद्रिय कोई पावरफुल होता है लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसे नहीं है। उसके जो पांच इंद्रिया है वो पांचों के पांचों बहुत पावरफुल है और वो पांच ऐसे हैं कि वो हमें निम्न योनियों में ले जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे नाक है हाँ जो भवरा है हाँ वो सुगंध लेने के लिए आकृष्ट रहता है। भवरा में भी कमल के फूल में जाता है, उसका मकर सुगंध आदि लेने में इतना मग्न होता है क्योंकि वो फूल सुबह उमड़ता है और संध्या के समय बंद होता है, तो उसकी सुगंध लेने में इतना मग्न रहता है कि संध्या के समय भी वो बाहर नहीं आना चाहता। वैसे हम हैं, अपने इंद्रिय भोगों में इतने रममान रहते हैं कि निरंतर सोचते हैं कि ये इंद्रिय उपभोग मेरे जीवन में शाश्वत होना चाहिए, इटर्नल। तो जो भवरा है वो उसमें चला जाता है फूल के अंदर और उस सुगंध को लेते रहता है, संध्या होती है और जब वो बंद हो जाता है फूल और उसके अंदर वो मरता है, बल्कि उसके पास वो शक्ति है। भवरा लकड़ी को भी छेद करके निकल सकता है, लेकिन अभी इतना इंद्रिय आसक्त है वो निर्बल हो जाता है। और कमल इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है उसकी पंखुड़ियां, फिर भी उसका छेद करके बाहर नहीं आ सकता। तो इंद्रिय उपभोग हमें बहुत अधिक विक बना देता है, बहुत अधिक निर्बल बना देता है हाँ एक व्यक्ति को। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि ये इंद्रिय उपभोग वैसे ही है जैसे कोई जलाशय है और जलाशय के किनारे उसी जलाशय के किनारे बहुत बड़े बड़े घास होते हैं और वो घास जल का उस जलाशय का पानी खींच खींच कर बड़े हो जाते हैं और एक दिन आता है कि वो जलाशय पूर्ण रूप से सूख जाता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त का जीवन है, जब वो इंद्रिय विषयों में निमग्न रहता है धीरे धीरे कुछ सालों में पता चलता है कि उसका कृष्ण भावना अमृत रूपी जो जलाशय है हृदय वो खाली हो गया है, उसमें कृष्ण भावना रूपी कोई जो जल है वो बचा नहीं है। बाहरी रूप से केवल वो दिखावा करता है भगवत भक्त होने का, लेकिन हृदय क्या हो गया है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते रहने से हृदय खोखला हो गया है। इसी कारण से ये जो हम निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, ज्ञान होने के बावजूद भी, भक्तों का संग होने के बावजूद भी, कृष्ण भक्ति की सुविधा होने के बावजूद भी, जब हम इन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं और उनके उपभोग में मग्न होते हैं, जैसे अलग अलग प्राणियों का उदाहरण दिया जाता है, जो हाथी है स्पर्श सुख के लिए पागल होता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं, जंगल में बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं आसाम वगैरह में और वहां हाथी का आवाज, चाहे टेप रिकॉर्डर चलाते हो या जैसे भी करते हो, या किसी हाथी को उस गड्ढे में रख देते हैं और जैसे उस हाथी की चिल्लाहट को सुनता है हाथी, जो इतना सामर्थ्यवान शक्तिशाली है, उसका स्पर्श करने के लिए, उसके साथ रमन करने का जो सुख है, उसकी प्राप्ति करने के लिए वो हाथी दौड़ते हुए आता है और जो ढका हुआ गड्ढा है उसमें जाकर गिरता है और फिर वो पकड़ा जाता है और फिर कैसे उसको पूरा जीवन कंट्रोल किया जाता है उसे, और एक छोटा सा अंकुश, एक व्यक्ति उसके ऊपर महावत बैठता है, उसके हाथ में छोटा सा अंकुश है जिसके द्वारा इतने विशाल हाथी को कंट्रोल किया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, ये जो इंद्रिय भोग स्पर्श करने की जो भावना है, स्पर्श सुख की जो चाह है हमारे हृदय में, जब हम उसमें फंस जाते हैं तो माया हमें छोटे से इस सुख से क्या करती है, क्षणिक है, उस समय का है, कुछ मिनटों का सुख है, उससे हमें जीवन भर कंट्रोल करके रखती है। हम चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा धीराज सब इसके वश में आ गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं। और जैसे तीसरा इंद्रिय है जिह्वा, जिह्वा के द्वारा प्रभुपाद ने कहा ये कंट्रोल में है तो सारा जगत आपके वश में है। तार मध्ये जिह्वा आते लोभ माया सुदूरवती, ये जिह्वा ऐसी है जो आपका जीवन नियंत्रित रख सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जीवा कंट्रोल में है तो बाकी इंद्रियां अपने आप आपके वश में होगी। जीवा, पेट और जनन इंद्रियां ये एक ही लाइन में है। जैसे व्यक्ति जीवा को कंट्रोल नहीं करता तो बाकी इंद्रियों को वो वश में नहीं रख सकता, उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीवा को कुछ देना ही है तो कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। तो जो मछली है बहुत कुछ है खाने के लिए उसको वहां, लेकिन फिर कोई व्यक्ति ऊपर से मछली पकड़ने के लिए कुछ रस्सी डालता है जिसके अंदर हुक होता है और हुक में कुछ मांस का टुकड़ा लटकाता है, तो मछली जैसे उसको खाने के लिए जाती है या ऐसा टेढ़ा हो उसके मुंह में चला जाता है और अटक जाती है मछली और रोन मर जाती है। तो वैसे ही हम अपने जीवन में इस जीवा पर कंट्रोल न होने के कारण अपना जो जीवन है वो खत्म कर देते हैं। और तीसरी है, चौथी इंद्रिया है आंख। आंख भी हमें क्या करती है, बारंबार कृष्ण भावना से विचलित करती है। हम बारंबार भौतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं। जैसे बारिश के दिनों की शुरुआत में जो पतंगे हैं, कीड़े हैं, वो लाइट पर जाते हैं और उसके आकर्षण से गिरकर मर जाते हैं, या दिया को देखते हैं तो वो पतंगे जाते हैं और दिया की आग से जलकर मर पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी भौतिक सौंदर्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है और हम इस इंद्रिय भोगों से के वश में आकर अपना जो मूल्यवान जीवन है वो खो देते हैं। और जो हिरण है, हिरण जो बहेलिया है, वो मधुर मधुर बांसुरी आदि की ध्वनि सुनाता है और हिरण को मंत्रमुग्ध करके उसे मारकर अपनी जीविका उपार्जन करता है। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग जो प्राणी है उनकी एक एक इंद्रिया प्रबल है, लेकिन हमारे साथ बहुत कठिन है। हमारी पांचों इंद्रिया क्या है, अत्यधिक प्रबल है और वो ये इंद्रिया सदैव हमें खींचती रहती हैं उपभोग करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगा आदत्य अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। तो भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों के द्वारा जो सुख हमें महसूस होता है शुरुआत में वो अमृत से भी ज्यादा बढ़कर लगता है, अमृत से भी अधिक मीठा और सुस्वादु है इंद्रिय सुख शुरुआत में, लेकिन परिणाम विषमेव। ये रजोगुणी सुख का वर्णन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये रजोगुणी जो सुख है परिणाम में क्या होगा, विष के समान होगा। इसलिए भगवान पांचवें अध्याय में कहते हैं कि जो न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है उसमें रममान नहीं होता, क्योंकि उसका क्या है, आदि है और उसका अंत है। इसी कारण से बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रममान नहीं होता। और गीता में कृष्ण कहते कि ऐसा सुख शुरुआत में आनंद प्रदान करता है लेकिन परिणाम उसका क्या है, विष के समान है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये जो मूल्यवान मनुष्य देह है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, लेकिन इस मनुष्य जीवन मिलकर मैं यदि उसका दुरुपयोग केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए करूं तो वो जीवन पाशविक है। इसलिए भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं विषयः खलु सर्वथा शाप, ये जो विषय सुख है वो सारे योनियों में सारे शरीरों में आपको सरलता से प्राप्त होने वाला है, उसके लिए क्यों इतना चिंतित हो रहे हो, क्यों इतना उन्मत्त है, क्यों इतना पागल हो रहे हो। और आप उस इंद्रियों को चाहे जितना मर्जी संतुष्टि करने का प्रयास करो वो हमेशा क्या करती है, डिमांड करती है, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो रजोगुण से उत्पन्न है। इसी कारण से शंकराचार्य कहते व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए लेकिन एक आशा उसके हृदय से जाती नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धायावत रहित्वा दंडम तथापि न मुंचति दशना विहीनम जातम तुंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। वो कहते वृद्धायावत रहित्वा दंडम, वृद्धावस्था आती है दंडा ग्रहण करता है चला नहीं जाता, और दशना विहीनम जातम तुंडम वृद्धावस्था में सारे दांत गिर जाते हैं, और अंगम गलितम अंग गलने लगता है, पलितम मुंडम सर में बाल नहीं बचते। लेकिन कितनी दुर्दशा है, इतना सब होने के बाद ये मूर्ख जीव तथापि न मुंचति आशा पिंडम, इतना सब होने के बाद फिर भी जो भोग करने की डिजायर है, आशा है, इंद्रियों सुख प्राप्त करने की जो लालसा है, रंश मात्र भी उसके हृदय से जाती नहीं है। कहते कितना दुर्भाग्य है। तो ये इंद्रियों को चाहे भौतिक रूप से हम जितना दुष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन कभी भी वो दुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए ययाति भागवतम में तो हजारों उदाहरण है। ययाति महाराज जब उनके राजा थे, उनकी पत्नी शर्मिष्ठा होने के बावजूद भी देवयानी थे, शर्मिष्ठा से वो आसक्त हो जाते हैं, और इतना आसक्त हो जाते हैं उनका उपभोग करने के लिए। तो जब देवयानी के जो पिता है उनको शाप देते हैं कि आप वृद्ध हो जाओ, लेकिन फिर भी इतनी लालसा इंद्रिय भोग करने की कि अपने पुत्रों के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप अपना जो युवा अवस्था है जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा आप ले लो। हाँ, प्रभुपद कहते हैं अमेरिका में वृद्धा बूढ़े लोग भी नाइट क्लब में जाते हैं डॉलर्स दे देकर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भौतिक भोग करने की भावना रंश मात्र भी कम नहीं हो रही है, चाहे वृद्धावस्था क्यों ना आए। तो ऐसे जो ययाति ने जब हजारों साल अपने इंद्रियों का उपभोग करने का प्रयास किया, एक दिन उनको अनुभूति हुई। एक दिन उन्होंने एक सुंदर सा लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने अपने अनुभूति को सबके सामने विशेष रूप से प्रदर्शित किया, और ययाति कहते हैं न जातु काम कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा प्रश्न वर्तमेव भूय एवादि वर्तते। कहते इस इंद्रिय उपभोग को जितना मर्जी आप तृप्ति करने का प्रयास करो, न जातु काम कामना, ये जो काम है उसका उपभोग करने से ये कामना हमारे हृदय से जाती नहीं है। हविषा, हविषा मतलब बटर, ये वैसे ही है, या फिर घी। हविषा कृष्ण वर्तमेव, जो घी है जितना आप फायर में डालोगे उतनी आग क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंद्रियों का उपभोग वैसे ही है, उनका उपभोग करने से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, बल्कि उनका उपभोग करते करते उसकी और इच्छा उन उपभोग करने की बढ़ने लगती है। इसी कारण से ये जो महान महान राजा है, महान महान जो ऋषि मुनि है, हमें वो शिक्षा प्रदान करते हैं कि ये जो भौतिक इंद्रियों तृप्ति की भावना है वो हमारे हृदय से भोग करने से कभी जा नहीं सकते। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जैसे इस तात्पर्य में आखिर में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भगवान की मोहमयी शक्ति है ये बहुत दुर्लभ्य है। सातवें अध्याय का श्लोक उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। तो ये मोहमयी शक्ति इतनी शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है कि हमें हमेशा उसमें लगा के रखती है इंद्रिय भोगों में, और इससे निकलने का एक ही उपाय है। क्या करना, जो महान अधिकारी है भगवान के जो भक्त हैं उनके द्वारा शमन करें, या आप भगवान की सेवा में नियुक्त हो। भगवत भक्ति के अलावा यानी इंद्रिय विषयों से मुक्त होने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे उपाय क्या है, कुछ समय के लिए उचित है, लेकिन उनका परिणाम फिर से इंद्रिय भोगों में रत होना है। जैसे विश्वामित्र थे, 60,000 साल तपस्या करके भी वो फिर से मेनका के नुपुर से आकृष्ट हो जाते हैं। सौवरी मुनि, उन्होंने सोचा ये इंद्रिया बहुत चंचल है, डिमांडिंग है, इसलिए ऊपर में रहता हूं तो सब जगह सारी मेरी इंद्रिया आकृष्ट होती है, इससे अच्छा है कि मैं पानी के अंदर जाकर एकांत में भगवत भजन करता हूं। पानी के अंदर चले गए और वहां जाकर भी इंद्रिय भोग करने की भावना खत्म नहीं हुई या कम नहीं हुई और वो इंद्रिय भोगों में लिप्त हो गए। क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? श्रीमद् भागवतम कहता है कि उन्होंने एक गलती की थी। क्या? यन्ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। तो ये सब लोग अपने आप को विमुक्त समझते हैं और उन्होंने एक गलती की, अनादृत युष्मद् अंग्रयः। अनादृत मतलब भगवान के चरण कमलों को छोड़ा, युष्मद् अंग्रयः, अंग्रयः मीन्स भगवान के चरण कमल। पतन्ति अधो, इसी कारण से उनका क्या हो गया, फिर से इंद्रिय भोगों में पतन हो गया। इसलिए जो भगवत भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है तो ये इंद्रियां जिनका वर्णन काल सर्प पटली से किया है, सांप की भांति है, लेकिन उसको एक्सपर्ट सपेरा चाहिए। तो ये जो काल सर्प के समान जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूपेण वश हो जाती है यदि कोई व्यक्ति भगवत भजन में या भगवत सेवा में नियुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोगों में भी एक रस है और उसको कहते हैं जड़ रस या भौतिक रस कहते हैं। इसका पान करने के लिए भी व्यक्ति हमेशा लालायित रहता है और इस रस से परे कौन सा रस है? वैकुंठ रस है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय भोगों का जो टेस्ट है, रस है, उससे उन्नत रस हमें अनुभव होता है भगवत सेवा का जो सुख है, तो फिर ये निम्न इंद्रियों से जो जनित या उत्पन्न जो रस है वो हमें निकृष्ट लगने लगेगा। जैसे हरिदास ठाकुर है या फिर यमुनाचार्य है, यमुनाचार्य ने भी कहा, यमुनाचार्य कहते हैं कि जैसे इंद्रिय भोगों का मुझे स्मरण होता है उस पर मैं थूकने लगता हूं, इतना नगण्य या तुच्छ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कृष्ण की ओर अत्यधिक आसक्त हो गया है। कृष्ण सेवा का, कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का जो सुख है वो उनको अत्यधिक प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण इंद्रिय सुख तुच्छ प्रतीत हो रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इससे हमें निकलना है तो हमें एक महान भक्त का आश्रय लेना होगा। और जैसे रामानुजाचार्य का उदाहरण आता है, रामानुजाचार्य जब जा रहे थे कावेरी में स्नान करके अपने शिष्यों के साथ, 5-6 शिष्य थे और सामने भगवान का पालकी जा रहा था जिसमें हजारों लोग थे और पालकी में भगवान जा रहे थे रंगनाथ, और उस समय हर कोई व्यक्ति नाच रहा था, स्तुतियां कर रहा था, श्लोकों का उच्चारण कर रहा था, भगवान को प्रणाम कर रहा था, फ्लावर्स ऑफर कर रहा था, लेकिन एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। इतने सारे भीड़ में उन्होंने देखा एक नवयुवक अपने हाथ में अम्ब्रेला लिया हुआ है, एक छाता लिया हुआ है, और एक युवती के सर के ऊपर उसने रखा है, और एक हाथ में पंखा है और निरंतर उसकी आंखों में देखते हुए जा रहा है। रामानुजाचार्य ने कहा, अरे सब लोग रंगनाथ को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस सारे जुलूस में ये विचित्र दृश्य क्या है? तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ उसको मेरे पास बुलाओ। तो जब वो डिसाइपल गया दौड़ते हुए, तो देखा कि इतना उसमें निमग्न था, इसने जोर से बोला हरि बोल, तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही बिल्कुल निमग्न हो गया था। दो तीन बार बोला, तब उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे बुला रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको यतिराज रामानुजाचार्य बुला रहे हैं। तो वो फिर जाता है रामानुजाचार्य के पास। रामानुजाचार्य ने पूछा, अरे बताओ तुम क्या देख रहे थे? उन्होंने कहा मैं तो यहाँ नजदीकी एक गांव से हूँ और मैं रेसलर हूँ, मेरा एक कार्य है और मैं सबसे सुंदर आंखों की खोज में था और फाइनली सबसे सुंदर आंखें मेरे जीवन में मुझे मिली गई। इस नवयुवती की जो आंखें हैं वो सबसे सुंदर है इस संसार में, उससे अधिक सुंदर कोई आंखें नहीं है। तो रामानुजाचार्य को दया है। रामानुजाचार्य ने कहा अरे घर में तुम्हें इससे भी सुंदर आंखों का दर्शन कराऊं, हाँ तो तुम तैयार हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं, इससे भी सुंदर आंखें यदि मुझे दर्शन करने के लिए प्राप्त होगी तो मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह मेरे आश्रम में आ जाओ, जिनका नाम था धनुर्दास और उस युवती का नाम था हेमा। तो जब उन्होंने सुबह सुबह ये गया रामानुजाचार्य के पास आश्रम में, तो रामानुजा ने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर उनको ले गए, सात दीवार उनको लांघकर फाइनली भगवान के अल्टर के सामने जाकर उनको खड़ा कर दिया और हाथ से इशारा करते हुए कहा देखो भगवान तो लेटे हुए और बहुत कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो उन्होंने कहा देखो इन आंखों को। तो जैसे देखा उसका हृदय पिघल गया और रोने लगा और गिर पड़ा कि मैंने क्या अपने जीवन में अपना जीवन किस प्रकार से गवा दिया है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने वास्तव में उनको परम दृष्टवा निवर्तते। तो एक जो भक्त है आचार्य है, हमारे भौतिक इंद्रिय भोग को बदलकर कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकता है। प्रभुपाद ने भी वैसे ही किया। जो सारे क्लेश यवन मांस मदिरा इनमें फंसे हुए थे, उस रस का आस्वादन करने के लिए निमग्न थे, उनको प्रभुपाद ने क्या खिला खिला कर भक्त बनाया, कृष्ण प्रसाद। मैं कल पढ़ रहा था लीलामृत से, तो उसमें वर्णन आ रहा था कि प्रभुपाद जब शुरुआत में वो छोटा सा टेम्पल था स्टोर फ्रंट न्यूयॉर्क में, तो उसमें जब ये लोग आते थे और वो आते थे केवल प्रसाद पाने के लिए कि स्वामी जी कुछ ना कुछ बनाएंगे और हम खाएंगे, तो वो आते थे और बैठ जाते थे और उसमें से एक डिवोटी था, उनका नाम याद नहीं मुझे, डिवोटी नहीं हिप्पी, वो चपाती खाने में बहादुर था, 15-20 चपातियां खाता था। तो प्रभुपाद ने रोक लगाए कि तुम्हारे लिए रोक है कि 10 से ज्यादा नहीं, एवरीडे 10 से ज्यादा चपाती नहीं। बाकी उनको प्रभुपाद जाते थे और सबको उकसाते थे, अरे और खाओ, तो इन सबको इतना अच्छा लगता था कि स्वामी जी खुद बनाते हैं और हमें माँ से भी आगे प्रीति से खिलाते हैं और हमें बोलते रहते कि कंठ तक खाते रहो। तो इन सबको इतनी आदत हो गई कि वो किचन के इर्द गिर्द घूमने लगते थे और एक चीज का इंतजार करते थे, क्योंकि सारे कुकिंग एंड हो गई, उसका मतलब जब दाल में छोक लगाता थे, तो जो आखिरी में क्या होता था, सारी चीजें बनते थे और दाल जब बनते थे तो छोक लगा देते वहां, तो उसमें जोर से आवाज आते थे और वो एक विशेष प्रकार का सुगंध घूमता बाहर निकलता था। तो सारे जो लड़के हिप्पीज हैं ये कहते थे बस अभी भोजन तैयार। और कभी कभी एक बार तो ऐसे हो गया जब वो छोक लगा रहे थे, इतना तेजी से वो बर्तन है ऊपर का उड़ गया, ऊपर जाकर छत को जाकर जोर से लगता है और सारे हिप्पीज नाचने लगते हैं कि आज शायद कुछ विशेष बना हुआ है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने भी उनका ये जो रस इन इंद्रियों इंद्रिय भोग का जो रस है उसको बदल दिया कृष्ण प्रसाद उनको खिला खिला कर। तो उसी प्रकार से ये जो आचार्य गण है रामानुजाचार्य आदि ये भी इनका हृदय परिवर्तन करते हैं कृष्ण के कमल के समान आंखों का दर्शन प्रदान करके। तो किस प्रकार से हम हमारा जो रुचि है वो बढ़ा सकते हैं कृष्ण की ओर, इंद्रिय भोगों की ओर ये रुचि कैसे हम कम कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है इंद्रिय भोगों के प्रति रुचि को कम करना है तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत कहता है कि व्यक्ति को कृष्ण के नामों का अपने जीवा से उच्चारण करना शुरू करना चाहिए। ये सबसे प्रभावशाली साधन है। जैसे हम कृष्ण नाम का उच्चारण कम होने लगता है, उचित ढंग से नहीं होता, तो ये इंद्रिय भोग हमें आकृष्ट करने लगता है। और दूसरी चीज श्रीमद् भागवतम में कही गई है, पिबन्तिये भागवत आत्मना सताम कथा मृतम श्रवण पुटेषु समृतम पिबन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सुरहांतिकम। तो कहते हैं कि पिबन्तिये भागवत आत्मना सताम, जो उन्नत भक्त है उनके द्वारा श्रीमद् भागवतम को सुनना पावरफुल मीडियम है। कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम, ये जो कृष्ण कथामृत है कानों के रंध्रों के द्वारा प्रवेश करना चाहिए। पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम, आशयम मीन्स हृदय, जो विषय विदूषित विषय भोग करने की भावना से जो हृदय दूषित हो गया है वो क्या हो जाएगा, पुनन्ति शुद्ध हो जाएगा। व्रजन्ति तच्चरण सुरहांतिकम, और फिर भगवान के चरण कमलों की ओर जो हृदय आकृष्ट होगा। हाँ, वो कहते हैं कि दूसरी चीज है कि निरंतर श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ें या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। और तीसरी चीज है क्योंकि ये जो इंद्रिय भोग ऐसी वस्तु है, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आया है कि तीनों जगत का सारा उपभोग इंद्रिय भोगी व्यक्ति को दिया जाए फिर भी वो कदापि संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसका इंद्रिय भोग करने की भावना अत्यधिक बढ़ेगी। लेकिन यदि व्यक्ति इन कार्यों को करता है, सर्वप्रथम है कृष्ण नाम का उच्चारण करना है, और दूसरा है नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को विशेष रूप से पढ़ता है सुनता है, और तीसरा है दूसरों को एक कृष्ण भावना देने का प्रयास करता है, प्रचार करने का प्रयास करता है, तो इन तीन चीजों से ये जो इंद्रिय भोगों का आकर्षण है जिसके द्वारा हम पीड़ित हैं वो हमारे हृदय से खत्म हो सकता है और कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उजागर हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की वदन पावन श्रील प्रभुपाद।